लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है साइप्रस में संत पापा फ्रांसिस की प्रेरित यात्रा पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट। साइप्रस एक खुला दरवाजा, एकजुट करने वाला बंदरगाह। पूर्वी मध्य सागर स्थित द्वीप देश साइप्रस गणतंत्र में अपनी दो दिवसीय प्रेरित यात्रा के प्रथम दिन संत पापा फ्रांसिस ने इन शब्दों से साइप्रस तथा उसकी जनता का भावपूर्ण अभिवादन किया। सार्वभौमिक कैथोलिक कलीसिया के परम धर्म गुरु संत पापा फ्रांसिस गुरुवार को रोम से साइप्रस और ग्रीस की 5 दिवसीय प्रेरित यात्रा के लिए रवाना हुए थे। यात्रा के प्रथम 2 दिन साइप्रस में व्यतीत कर संत पापा शनिवार 4 दिसंबर को ग्रीस की ओर प्रस्थान करेंगे। तुर्की के दक्षिण में स्थित साइप्रस भूमध्य सागर का तीसरा सबसे बड़ा और तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप है। इसकी सीमाएं दक्षिण में तुर्की, पश्चिम में सीरिया, उत्तर पश्चिम में गजा पट्टी, इसराइल और लेबनान तथा दक्षिण पूर्व में ग्रीस से संलग्न है। देश की राजधानी तथा इसका सर्वाधिक विशाल शहर निकोसिया है। गुरुवार अपरान निकोसिया स्थित कृपा की रानी मरियम को समर्पित मारोनी रीति के महागिरजाघर में कैथोलिक याजक वर्ग, धर्म संघियों, धर्म समाजियों तथा धर्म शिक्षकों के साथ मुलाकात से संत पापा फ्रांसिस ने साइप्रस में अपने 2 दिवसीय प्रेरित मिशन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर संत पापा ने आप्रवासियों और शरणार्थियों को प्रदान की जा रही मदद के लिए साइप्रस की सराहना की, जहां अधिकारियों के अनुसार हाल के वर्षों में पड़ोसी देशों के हजारों लोग शरण पा रहे हैं। साइप्रस का कहना है कि वह द्वीप को विभाजित करने वाली विभाजन रेखा से अथवा पड़ोसी मध्य पूर्व से नामों द्वारा अनिर्दिष्ट आप्रवासियों की आमद से निपटने के लिए संघर्ष कर रहा है। संत पापा ने कहा, आपकी भाईचारे की भावना से आप सभी को और पूरे यूरोप को याद दिला सकते हैं कि हमें मानवता योग्य भविष्य का निर्माण करने, विभाजनों को दूर करने, दीवारों को तोड़ने, सपने देखने और एकता के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है।
संत पापा फ्रांसिस ने साइप्रस की अपनी प्रेरित यात्रा के पहले दिन मारोनाइट कृपाओं की माता के महागिरजा घर में माता कलिस्सा की प्रेरिताई कार्य में हाथ बटाने वालों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें एक धैर्यपूर्ण कलिस्सा की जरूरत है, एक कलिसिया जो परिवर्तन से विचलित नहीं होती बल्कि शांति में, नवीनता और सुसमाचार के प्रकाश में परिस्थितियों पर चिंतन करती है। बरनाबस की भांति हमें धैर्य और सजगता में ईश्वर के द्वारा आने वाली निशानियों को देखना है, जो अपने आलिंगन से किसी को वंचित नहीं करते हैं।
Vorrei dire, siate pastori pazienti della vicinanza. Non stancatevi mai di cercare Dio nella preghiera.
संत पापा ने अपने धर्माध्यक्ष भाइयों से निवेदन किया कि वे धैर्य में लोक धर्मियों के निकट रहें, बिना थके प्रार्थना में ईश्वर की खोज करें और अपने पुरोहितों से मिलने और अन्य धर्मों के अनुयायियों का, चाहे वे कहीं भी हों, आदर और सम्मान करें। पुरोहितों को संत पापा ने कहा कि वे लोक धर्मियों के प्रति धैर्यवान बने रहें। आप कठोरता में किसी के प्रति न्याय ना करें बल्कि प्रेमी पिता बने। भ्रातृत्व में कलिसिया के बारे में संत पापा ने जोर देते हुए कहा कि अपने भ्रातृत्व की भावना में सारी दुनिया को हम इस बात की याद दिलाते हैं कि हमें एक साथ मिलकर अच्छी मानवता का निर्माण करना है, विभाजनों पर विजयी पानी है, दीवारों को गिराना है, सपने देखते हुए एक साथ एकता हेतु कार्य करना है।
E integrarci, di camminare insieme, di essere sorelle e fratelli tutti.
हमें एक दूसरे का स्वागत करते हुए भाई बहनों के रूप में एक साथ चलना है।
मारूनी रीति के कैथलिक महागिरजाघर में धर्म समाजियों, धर्म संघियों और धर्म शिक्षकों को अपना संदेश देने के उपरांत गुरुवार संध्या राजधानी निकोसिया स्थित राष्ट्रपति भवन में संत पापा फ्रांसिस का स्वागत किया गया। सन 2013 से सत्ता संभाल रहे साइप्रस गणतंत्र के राष्ट्रपति निकोस अनास्तासियादिस ने संत पापा फ्रांसिस की प्रेरित यात्रा को एक ऐतिहासिक यात्रा निरूपित किया है। वैटिकन न्यूज के संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि संत पापा फ्रांसिस का हमारे यहां आना उन सब के लिए एकात्मता का संदेश है जो पीड़ित हैं, और इनमें वे भी शामिल हैं जो संकट में हैं अथवा अधिकृत भूमि पर जीवन यापन कर रहे हैं। राष्ट्रपति निकोस अनास्तासियादिस के साथ औपचारिक मुलाकात तथा उपहारों के आदान प्रदान के बाद संत पापा फ्रांसिस ने साइप्रस गणराज्य के राष्ट्रपति, स्थानीय अधिकारियों, नागर समाज के प्रतिनिधियों तथा राजनयिक कोर के साथ मुलाकात की और सभ्यताओं के चौराहे के रूप में द्वीप राष्ट्र साइप्रस की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने लगभग आधी शताब्दी से साइप्रस को विभाजित करने वाले भयानक घाव के उपचार हेतु मैत्रीपूर्ण संवाद का आग्रह किया और कहा कि किसी भी पक्ष को बल या धमकियों का उपयोग नहीं करना चाहिए। सन 1974 में ग्रीक प्रेरित तख्ता पलट द्वारा शुरू हुए तुर्की आक्रमण के बाद से साइप्रस दो भागों में विभाजित हो गया है। मध्यस्थता के अनगिनत प्रयास विफल रहे हैं तथा 2017 में वार्ताओं के विफल होने के बाद शांति प्रक्रिया ठप पड़ गई। आज साइप्रस के हजारों ग्रीक और तुर्की नागरिक आंतरिक रूप से विस्थापित हैं। संत पापा फ्रांसिस द्वीप के दक्षिणी हिस्सों का दौरा कर रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त साइप्रस सरकार द्वारा नियंत्रित है। उत्तरी साइप्रस में एक अलग तुर्की साइप्रस राज्य है जो केवल अंकारा मान्यता प्राप्त राज्य है। इस प्रकार निकोसिया विश्व की अंतिम विभाजित राजधानी है। वैटिकन का परम धर्म पीठीय प्रेरितिक राजदूतावास विभाजन रेखा पर ही स्थित है। गुरुवार को ही संत पापा ने एक ट्वीट संदेश प्रकाशित कर लिखा था, शांति का रास्ता जो संघर्षों को सुलझाता है और बंधुत्व को पुनर्जीवित करता है संवाद द्वारा चिन्हित है। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए ताकि धैर्यवान और संवाद की बेदाग ताकत पर विश्वास किया जा सके। यह कोई आसान रास्ता नहीं है, तथापि पुनर्मिलन हासिल करने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं हो सकता। उन्होंने साइप्रस के उन लोगों का भी स्मरण किया जो अपने घरों और अपने आराधना स्थलों पर लौटने में असमर्थ हैं।
साइप्रस की अपनी प्रेरितिक यात्रा की शुरुआत में संत पापा फ्रांसिस ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने स्थानीय अधिकारियों और उपस्थित राजनयिक प्रतिनिधियों को संबोधित किया। अपने संबोधन में संत पापा ने राष्ट्रपति निकोस और सभी साइप्रस वासियों को उनके गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए धन्यवाद दिया। संत पापा ने साइप्रस को एक खुला दरवाजा, एक बंदरगाह कहा जो सभी को एकजुट करता है। यह सभ्यताओं का चौराहा भी बना हुआ है। संत पापा ने कहा कि वे पहले महान मिशनरियों, विशेष रूप से संत पौलुस, संत बरनाबास और संत मार्कुस के नक्शे कदम पर चलने के लिए गहराई से प्रेरित हुए हैं। वे उनके बीच तीर्थयात्री के रूप में आए हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि कैसे इन प्रारंभिक ख्रिस्तियों ने आत्मा की कोमल शक्ति के माध्यम से सौंदर्य के अभूतपूर्व संदेश को लाया जो इस देश को विरासत के रूप में मिला है, जिसके माध्यम से महाद्वीपों के बीच सुंदरता का दूत बन गया जो द्वीप, समुद्र और आसपास के प्राकृतिक सुंदरता में परिलक्षित होता है। उन्होंने साइप्रस की तुलना भूमध्य सागर के बीचों बीच मूल्यवान मोती से की। संत पापा ने कहा, जिस तरह एक मोती बनने के लिए समय लगता है, उसी तरह साइप्रस में सदियों से अनेक संस्कृतियां भी आपस में मिली जिससे यह कई लोगों, संस्कृतियों और परंपराओं की समृद्धि भूमि बन गई। उन्होंने कई आप्रवासियों की आधुनिक उपस्थिति का भी हवाला दिया। प्रतिशत के हिसाब से यूरोपीय संघ के देशों में प्रवासियों की संख्या इस देश में ज्यादा है। संस्कृतियों के इस निरंतर मिलन के लिए समय और धैर्य की आवश्यकता होती है और व्यापक दृष्टि की आवश्यकता है जो एक दूसरे को गले लगाती और एकजुट करती है। संत पापा ने आशा व्यक्त की कि विभिन्न कैथोलिक संगठनों को साइप्रस में एक उपयुक्त संस्थागत मान्यता से लाभ हो सकता है ताकि वे अपने शैक्षिक और उदार कार्यों के साथ समाज में बेहतर योगदान दे सकें। साइप्रस के सामने आने वाली चुनौतियों को देखते हुए संत पापा ने वर्तमान महामारी को याद किया जिसने अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। मानव तस्करी का संकट, विशेष रूप से साइप्रस का विभाजन, इसे भयानक घाव के रूप में वर्णित किया जो विशेष रूप से इन सभी विस्थापितों के लिए गहरी पीड़ा का कारण बना। संत पापा ने कहा, मैं आपको शांति के लिए, पूरे द्वीप की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। उन्होंने कहा कि संवाद द्वारा ही संघर्षों को सुलझाया जा सकता है, यही शांति का रास्ता है और एकता की सुंदरता को जीवंत करता है। उन्होंने एक दूसरे को संवाद की धीरता और निडर शक्ति में विश्वास करने में मदद करने के लिए प्रोत्साहित किया जो एक आसान रास्ता नहीं है, लेकिन यह सुलह का एकमात्र तरीका है।
साइप्रस और ग्रीस की प्रेरितिक यात्रा के दूसरे दिन शुक्रवार को संत पापा फ्रांसिस ने साइप्रस के महाधर्माध्यक्ष धन्य क्रिजोस्तोमोस द्वितीय से मुलाकात की तथा मध्य पूर्वी देशों में व्याप्त मारोनी रीति की कैथोलिक कलीसिया तथा रोम की कलीसिया के बीच विद्यमान भाई सुलभ संबंधों को मजबूत किया।
संत पापा फ्रांसिस ने साइप्रस की अपनी प्रेरितिक यात्रा के दूसरे दिन जीएसपी स्टेडियम में मिस बलिदान अर्पित करते हुए विश्वास को नवीकृत करने का आह्वान किया। संत पापा ने आगमन काल हेतु निर्धारित दैनिक पाठों के आधार पर दो अंधे व्यक्तियों की चंगाई पर चिंतन करते हुए तीन बिंदुओं पर प्रकाश डाला। संत पापा ने कहा, क्यों उन्होंने यीशु पर विश्वास किया? क्योंकि उन्होंने इस बात का अनुभव किया कि यीशु वह ज्योति हैं जो उनके हृदय और दुनिया के अंधकार को दूर कर सकते हैं।
Gesù è il medico, solo lui la luce vera che illumina ogni uomo. Lui ci dà l'abbondanza di luce, di calore, di amore. Solo lui libera il cuore dal male.
यीशु ख्रिस्त हमारे लिए दिव्य चिकित्सक हैं। सिर्फ वे ही सच्ची ज्योति हैं जो हर नर और नारी को आलोकित करते, हमें ज्योति और प्रेम में उत्साह से भर देते हैं। संत पापा ने कहा, हम यीशु को अपने हृदय की चंगाई का अवसर दें। अपने दुखों को एक दूसरे के साथ साझा करने को संत पापा ने दूसरा कदम बतलाया। आज के सुसमाचार में हम दो व्यक्तियों को पाते हैं जो एक साथ राह में चल रहे होते हैं। उन्होंने अपने दुख को एक दूसरे के साथ बांटा, अपने अंधे होने की नाखुशी और हृदय में एक चमकती ज्योति को अनुभव करने की चाह। वे एक साथ सहायता की मांग करते हैं। संत पापा ने कहा कि यह हमारे लिए ख्रिस्तीय और कलीसियाई जीवन के विशेष गुण को व्यक्त करता है जहां हम अपने व्यक्तिगतवाद, स्वार्थ जो हमारे हृदय को दूषित करता, परित्याग करते और एक साथ सोचते, बोलते और कार्य करते हैं। संत पापा ने आनंद में सुसमाचार की घोषणा को तीसरा चरण निरूपित किया। उन्होंने कहा कि चंगाई प्राप्त उपरांत वे दो व्यक्ति जो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं पूरे प्रांत में सुसमाचार का प्रचार शुरू करते हैं। सुसमाचार की खुशी जो हमारे हृदय और जीवन को भर देती, उसे हम अपने में सीमित नहीं रख सकते हैं। यह हमें स्वाभाविक रूप से साक्ष्य देने को प्रेरित करती और हमें एक निजी, उदास और विचित्र विश्वास के जोखिम से मुक्त करती है। उन्होंने कहा, हम सुसमाचार के दो अंधे व्यक्तियों की भांति एक बार पुनः यीशु से मिलें और निर्भीक होकर उनका साक्ष्य उन्हें दें जिनसे हम मिलते हैं। हम आगे बढ़ें और ईश्वर से मिली ज्योति को दूसरों तक ले चलें।
संत पापा फ्रांसिस ने शुक्रवार को साइप्रस की ग्रीक ऑर्थोडॉक्स कलीसिया के धर्माधिपति महाधर्माध्यक्ष धन्य क्रिजोस्तोमस द्वितीय से मुलाकात के अवसर पर सदियों से चली आ रही वैमनस्यता और पूर्वाग्रहों पर अफसोस जताया जिसने कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स ख्रिस्तियों को विभाजित किया है। कैथोलिकों और ऑर्थोडॉक्स ख्रिस्तियों के बीच उत्पन्न दरार को पाटने के लिए उन्होंने एक साथ मिलकर उदारता के कार्यों को सघन किए जाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, उदारता, शिक्षा और मानवीय गरिमा को बढ़ावा देने के प्रयासों के ठोस संयुक्त कार्य कैथलिक और ऑर्थोडॉक्स ख्रिस्तियों को अपनी बिरादरी को फिर से खोजने में मदद कर सकते हैं, जिससे ईश्वर की स्तुति हेतु सहभागिता अपने आप परिपक्व हो सकती है।
अपनी साइप्रस यात्रा के दूसरे दिन संत पापा फ्रांसिस ने ऑर्थोडॉक्स कलीसिया की पवित्र धर्म सभा से मुलाकात की। अपने संबोधन के दौरान संत पापा फ्रांसिस ने धर्म सभा में खुले दिल से स्वागत करने और आपसी संवाद को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद दिया। संत पापा ने कहा कि हमारे पास एक सामान्य प्रेरितिक मूल है। संत पौलुस ने साइप्रस को पार किया और रोम गए। इस प्रकार हम एक ही प्रेरितिक उत्साह के उत्तराधिकारी हैं और सुसमाचार हमें जोड़ता है। संत पापा ने कहा कि वे संत बरनाबास के जीवन के कुछ पहलुओं पर विचार करना चाहते हैं, जो हमें हमारी यात्रा पर मार्गदर्शन कर सकते हैं। संत पापा ने कहा कि प्रेरित चरित्र में हम पाते हैं कि प्रेरितों ने यूसुफ का उपनाम बरनाबास रखा। बरनाबास का अर्थ सांत्वना का पुत्र और प्रोत्साहन का पुत्र दोनों है। सुसमाचार की घोषणा के लिए इन दोनों विशेषताओं को मिलाना अनिवार्य है। सच्ची सांत्वना व्यक्तिगत नहीं रह सकती, लेकिन उसे उपदेश में अभिव्यक्ति मिलनी चाहिए और स्वतंत्रता को अच्छाई की ओर ले जाना चाहिए। साथ ही विश्वास में सभी उपदेश आवश्यक रूप से ईश्वर की सांत्वना की उपस्थिति में और बंधुत्व की उदारता के साथ होना चाहिए। सांत्वना का पुत्र बरनाबास हमें मानवता के लिए सुसमाचार लाने हेतु प्रोत्साहित करे। अगर हमें सांत्वना का पुत्र बनना है तो कहने से पहले सुनने की जरूरत है। खुद से सवाल करें और दूसरों के साथ साझा करें, क्योंकि सुसमाचार संचार द्वारा नहीं बल्कि सहभागिता द्वारा दिया जाता है, जिसे हम कैथलिक अगले कुछ वर्षों में अनुभव करना चाहते हैं। हम कलीसिया होने के लिए आवश्यक सहभागिता के आयाम को फिर से पाना चाहते हैं। इसमें हम आपके साथ साथ चलने की आवश्यकता महसूस करते हैं। आपकी धर्म सभा के अनुभव के माध्यम से आप हमारी मदद कर सकते हैं। कैथलिक कलीसिया और ऑर्थोडॉक्स कलीसिया के बीच धार्मिक संवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय मिश्रित आयोग में सक्रिय भागीदारी में भी आपका सहयोग दिखाई देता है। आगे संत पापा ने कहा कि संत बरनाबास को एक लेवी साइप्रस के मूल निवासी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। बरनाबास के पास एक जमीन थी, उसने उसे बेच दिया और उसकी कीमत लाकर प्रेरितों के चरणों में अर्पित कर दी। संत बरनाबास का उदाहरण हमें बताता है कि एकता और मिशन में सहभागी होने के लिए सब कुछ से खुद को अलग करने का साहस होना चाहिए। संत पापा ने स्पष्ट रूप से कुछ रीति रिवाजों और आदतों को समाप्त करने के जोखिम के बारे में कहा, जिनमें सभी की ओर से एक रूपता और सहमति की आवश्यकता नहीं होती। आइए हम खुलेपन के डर से लकवाग्रस्त ना हों, जिनका वास्तव में सुसमाचार से कोई लेना देना नहीं है। संत पापा ने संत बरनाबास के जीवन में एक और पहलू देखा, वह था उन परीक्षणों का जिन्हें उन्होंने झेला, विशेष रूप से झूठ और दुर्भावनापूर्ण व्यवहार। उन्होंने कहा, आज भी झूठ बोलने वालों और धोखा देने वालों की कोई कमी नहीं है, जो हमारी यात्रा में बाधा डालने के लिए अतीत को हमारे सामने रख देते हैं। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हमें उनके मार्ग का अनुसरण करने के लिए ज्ञान और साहस प्रदान करें।
साइप्रस में संत पापा फ्रांसिस की प्रेरित यात्रा का उद्देश्य साइप्रस के माध्यम से यूरोप को उसकी ख्रिस्तीय जड़ों का स्मरण दिलाना है। दूसरी ओर आस पड़ोस के देशों में संघर्ष की स्थिति के कारण मध्य पूर्व के अल्पसंख्यक समुदायों पर हमले होने के डर से साइप्रस के कलीसियाई नेता रोम की कैथलिक कलीसिया के साथ अपने संबंधों को सुदृढ़ करना चाहते हैं। और इसी के साथ वेटिकन रेडियो से प्रसारण समाप्त हुआ। नमस्कार।